नमस्तुभ्यं कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। तुलोद्वात सांगमयी सरस्वती माता की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, समय हो गया है और आप सबको प्रवचन निर्देशिका का अवसाध्याय प्रारंभ कर देना है। प्रवचन निर्देश का ग्रंथ के अंदर सम्यक दर्शन का प्रकरण रहा है कि सम्यक दर्शन उत्पन्न होने के कारण। उसके अंतर्गत सबने जाना आत्मा की समीचीन दृष्टि होना, यानी तत्वार्थ का सद्धान होना, अर्थात चिनेन्द्र भगवान के द्वारा जो कहे गए सात तत्व, नौ पदार्थ, पांच अस्थिकाय, छह द्रव्य आदि जो हैं, इन पर ज्यों का त्यों सद्धान करना, ये है सम्यक दर्शन, जिसे कहा तत्वार्थ सद्धानम सम्यक दर्शनम। ये तत्वार्थ सूत्र का सूत्र है। और इस प्रवचन निर्देशिका ग्रंथ के अंदर सम्यक दर्शन को बहुत अच्छे रूप से बताया है। सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाला जीव बस अपने संसार को एक लिमिट में सीमित मर्यादित कर लेता है कि अधिक से अधिक अर्धपुद्गल परिवार परिवर्तन करके ये जीव मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। तो वह सम्यक दर्शन चारों गतियों में होता है। भव्य जीव को, संगी को, पर्याप्त को, ये जिनके अंदर योग्यताएं होती हैं वे सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के अधिकारी हो जाते हैं। आज चलना है पेज नंबर 29 पर। यहाँ पर प्रकरण उमा स्वामी आचार्य के तत्वार्थ सूत्र के अनुसार चल रहा है और उसमें तत्वार्थ राजवार्तिक ग्रंथ की टीका पंक्तियों को भी उद्धृत किया है पूज्य गणिनी ज्ञानमती माता जी ने। लब्धि सार ग्रंथ के अनुसार भी बताया है कि सम्यक दृष्टि जीव किस प्रकार से तत्वार्थ के संस्कारों से तत्वार्थ पर श्रद्धान करके, तत्व अर्थों पर श्रद्धान करके जो देशना लब्धि को प्राप्त करते हैं गुरु के द्वारा, वह उस जन्म में तो काम आते ही हैं, कदाचित उस जन्म में काम नहीं आए तो अगले जन्म में भी वह देशना लब्धि प्रकट हो जाती है। किसी गुरु से आपने उपदेश सुना तो अगले भाव में भी जा करके, चाहे वो देव पर्याय में, चाहे नरक की पर्याय में, तिर्यंच की पर्याय में, या मनुष्य गति में जाने पर उस जीव को याद में आ जाते हैं। तो इसलिए कहा कि पूर्व भाव में सुने गए गुरु का उपदेश भी देशना लब्धि के रूप में कार्य आ जाता है। अब यहाँ एक प्रश्न हुआ कि जो जाति स्मरण, वेदनानुभव, धर्म श्रवण, जिनबिंब दर्शन, जिन महिमा और देवर्ध निरीक्षण कारण बताए गए हैं, वे इन पांच लब्धियों से रहित ही सम्यक्त की उत्पत्ति में कारण बन जाते हैं क्या? ऐसा क्वेश्चन हुआ है। तो इस प्रश्न का उत्तर देते हुए आचार्य देव ने कहा कि ऐसा नहीं है, क्योंकि जाति स्मरण, वेदनानुभव, जिन बिंब दर्शन, जिन महिमा दर्शन और देवर्धि दर्शन, इनमें से किसी एक कारण के होने पर धर्म से अनुराग रूप परिणाम होते हैं। शंका के अनुसार उसका समाधान किया कि इन पांच लब्धियों से रहित क्या ये कारण ही केवल सम्यक दर्शन को उत्पन्न करा देते हैं? तो कहते हैं कि इन जो ये कारण है, इनमें से कोई भी कारण जब उपस्थित हो जाता है तो धर्म के प्रति अनुराग होता है। समझो आप तीर्थ यात्रा को आए, गुरु से आपने प्रवचन सुना और उनकी प्रवचन पर श्रद्धान किया या भगवान के दर्शन किए, उससे आपको बोध हुआ भगवान के जन्मभूमि का स्पर्श किया, उस रज को अपने मस्तक पर चढ़ाया, उससे भी आपका मन, मस्तिष्क, आत्मा सब पवित्र हो गए। और उस समय जब पवित्रता आती है, उस समय असाता आदि अशुभ प्रकृतियों का अनुभव घटे ही घटेगा। जो खराब पाप कर्म की प्रकृतियां थी, तो उनमें फल देने की शक्ति जो है वो कम हो जाएगी। ये सहज है कि जब धर्म कार्य करेंगे, मन से भगवान की भक्ति करेंगे, तो पाप कर्म कम हो जाएंगे। और जब पाप कर्म कम होंगे, माने असाता कर्म कम हुआ, तो साता आदि शुभ प्रकृतियों का अनुभव अनंत गुण रूप में बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तथा इस प्रक्रिया के होने पर कर्मों की स्थिति का अंत कोड़ा कोड़ी सागर में हो जाना और 34 बंधाप शरणों के द्वारा तमाम प्रकृतियों का बंध से रुक जाना भी होगा। क्योंकि आपने प्रायोगिक लब्धि तक पढ़ा कि 34 तरह से बंध अपसरण, माने उन 34 प्रकार से कर्म आते हुए कर्म रुक जाएंगे, अपसरण उनका हो जाएगा, तब अपने आप कर्म प्रकृतियां अशुभ से शुभ रूप परिणत होकर के और सम्यक दर्शन की ओर आपको बढ़ा देती हैं। तो इन उपर्युक्त 5 कारणों में से किसी एक के होने पर क्षय, देखो लब्धि अलग है और कारण बाह्य कारण अलग है। लब्धियों का काम अंतरंग में अपने कर्मों का उपशम, क्षय क्षय उपशम कराना है, और बाहर में कारण बनते हैं। जाति स्मरण हो गया, शेर को संबोधन मिला तो उसको पहले भव का जाति स्मरण हो गया, हाथी को संबोधन मिला उसे जाति स्मरण हो गया, या वेदना के अनुभव से नरक में सम्यक दर्शन हो गया कि भाई मैंने पाप किए थे, इस कारण मुझे इतनी वेदना यहाँ मिल रही है, उससे भी पाप से डर करके वेदना के अनुभव से। तो इन कारणों में, ताकि 5 कारणों में जो देवर्दि दर्शन, जाति स्मरण, चिन्हबिंब दर्शन, वेदना अनुभव, देवर्दि दर्शन, जिन महिमा दर्शन, इनमें से कोई एक कारण मिला, तो उन 5 कारणों में से किसी एक कारण के मिलने पर क्षयोपशम, विशुद्धि और प्रायोग्य, ये 3 लब्धियां स्वभाव से हो जाएंगी। और देशना लब्धि के लिए तो ऊपर कथित प्रकार से समझ लेना चाहिए, अर्थात यदि धर्म श्रवण कारण मिला है तब तो देशना लब्धि स्पष्ट है, और यदि नहीं मिला है तो आप समझ लो कि पूर्व जन्म की देशना लब्धि आज आपको काम आ रही है। इससे पूर्व भाव में गुरुओं के उपदेश का संस्कार इस भाव में भी देशना लब्धि रूप हो जाता है, अथवा तत्वों के उपदेष्टा आचार्य उपाध्याय आदि का मिल जाना भी देशना लब्धि। और पंचम काल के अंदर अगर गुरुओं का संबोधन, उनका उपदेश मिल रहा है, तो ये भी देशना लब्धि है। आज सैकड़ों सैकड़ों नगरों को संतों के चातुर्मास का सौभाग्य मिल रहा है, ये क्या है? उनके प्रवचन सुनेंगे, आत्मा पवित्र होगी, न जाने कितने सम्यक दृष्टि बन जाएंगे, तो ये सब देशना लब्धि है। लब्धि माने प्राप्ति और देशना माने उपदेश, तो सच्चे उपदेश की प्राप्ति हो जाना ये देशना लब्धि है। तो तत्काल में जो मिलती है वो तो है ही, लेकिन जो तत्काल में अगर किसी को नहीं भी मिली तो पूर्व जन्म में प्राप्त हुई देशना भी आपकी काम आ सकती है, अथवा तत्वों के उपदेष्टा आचार्य उपाध्याय का मिल जाना भी देशना लब्धि है, या बहुत काल पूर्व में यदि उनका उपदेश सुना था और उस उपदेश में कथित पदार्थों के अर्थ का अवधारण किया था, तो वही भी उस समय देशना लब्धि रूप माना गया है। यही बात तो लब्धि सार की टीका में आई हुई है, जैसे कहा तेषाम उपदेश करा आचार्योपाध्याया दया तेषाम लाभो यह तद देशना प्राप्ति, चिरातीत काले उपदेशित पदार्थ धारण लाभ हुआ सा देशना लब्धि भवती, वह देशना लब्धि बन जाती है। तो देशना लब्धि का प्राप्त होना बहुत जरूरी है, इसलिए हमेशा कोशिश करना जहां भी संत चातुर्मास कर रहे हैं, चाहे आचार्य हैं, मुनि हैं, आरिकाएं हैं, इन सब के उपदेश सुनने के लिए जरूर जाना, समझ गए ना। और उस देशना लब्धि को प्राप्त करके अपनी आत्मा में कुछ ना कुछ अच्छी चीज धारण करना। देखो एक बात की बात है कि एक कन्या को जब वो दर्शन करने गई, जैन नहीं थी लेकिन अपने सहेलियों के साथ में मुनि के दर्शन करने चली गई। अब वहां पर देखा कि सब लोग नियम ले रहे हैं, तो उसने भी कहा महाराज मुझे भी कुछ नियम दे दो। महाराज ने कहा देखो 5 अणुव्रत ले लो। उसने पूछा अणुव्रत क्या होते हैं, बोले कि बिना मतलब की हिंसा नहीं करना अहिंसा अणुव्रत हो गया, सच बोलना सत्यानुव्रत हो गया, किसी की गिरी पड़ी चीज को नहीं लेना अचौर्यानुव्रत हो गया, और शादी से पहले तक ब्रह्मचर्य का पालन करना, शादी के बाद एक पति में या एक पत्नी के अंदर संतोष करना ब्रह्मचर्यानुव्रत हो गया। परिग्रह बहुत सारा संसार के अंदर है लेकिन उसकी लिमिटेशन कर लेना, बस ये परिग्रह प्रमाण व्रत हो गया। उसने सोचा मेरी सारी सहेलियां ले रही हैं, चलो मैं भी ले लेती हूँ, बड़े बड़ा अच्छा लगा। 5 अणुव्रत लेकर के वो कन्या आ गई। आके उसने खुशी खुशी अपने माता पिता को बताया कि मैंने ऐसे ऐसे गुरु से लिया है, बहुत सारे लोगों ने ऐसा नियम लिया था। उसके पापा एकदम भड़क गए, बोले ये सब हम लोगों को नहीं लेने का योग्य है, ये नंगे साधु जो है ऐसे ही करके ठग लेते हैं। तो वो बोली कि नहीं, ये गुरु ने बताया है कि इनको लेने से आगे जाके महर्षि देव बन जाएंगे। ने कहा उनके पिताजी ने कि उन्होंने मेरे से बिना पूछे दिया क्यों व्रत, बिना पिता के पूछे कन्या को व्रत क्यों दिया, अगर दिया है तो चलो मैं इसको वापिस करके आऊंगा। व्रतों को आप भी कभी वापिस करने गए हो? नहीं ना, कोई नियम लेके फिर वापिस साग भाजी नहीं होता। लेकिन वो बेचारा नियम की बात समझता ही नहीं था, और उसको धर्म विद्वेष था कि मेरी कन्या ने आज तो जा करके नियम लिया है और कल जाके उनके रंग में रंग जाएगी। उनने कहा मैं तो तेरे नियम वापिस करके आऊंगा, और वो अपनी कन्या को लेकर के गए। और रास्ते में ही कई प्रकार के प्रसंग आए, किसी को फांसी की सजा दी जा रही थी, पता लगा कि इसने किसी की हिंसा की है। भैया अभी उधर ही जल रही। तो कन्या ने कहा कि देखो पिताजी, मेरी गुरुवर ने यदि हमें नियम दिया है कि हिंसा नहीं करना वरना ऐसी फांसी की सजाएं मिलेंगी, झूठ नहीं बोला वरना जीभ काटी जाएगी, चोरी नहीं करना वरना बड़ी से बड़ी सजा मिलेंगी, तो इनमें दिक्कत क्या है। उन्हें जा करके गुरु बोले अच्छा चलो एक व्रत रख लो दो व्रत रख लो, लेकिन गुरु ने मेरे से पूछे बिना दिया क्यों, मैं उनसे पूछूंगा। जा करके गुरु से झगड़ा करने लगा कि आपने मेरी कन्या को ये सब क्यों दिया व्रत। अब गुरुदेव ने कहा कि ये आपकी कन्या नहीं, ये तो मेरी कन्या है। गुरु ने क्या कहा, ये आपकी कन्या नहीं, ये तो मेरी कन्या है। अब उसकी जान को और आ पड़ी कि अरे मैं हम हमारे घर में जन्म ली, मेरी पत्नी ने इसको जन्म दिया है और गुरु कह रहे हैं मेरी कन्या है, कैसे हो सकता। उसने सबको इकट्ठा कर लिया, कह रहे गुरु तो कह रहे तो मेरी कन्या है मेरी कन्या। अब उसको जान छुड़ाना मुश्किल हो गया कि मैं तो अपने घर ले जाऊंगा। तो कन्या भी बड़े आश्चर्य से होकर के गुरुदेव को देख रही है कि महाराज ने अगर कहा है तो बात क्या है। तो महाराज ने कहा, जब सब लोग इकट्ठे हो गए, राजा आया, उसने कहा महाराज आपने सब कुछ छोड़ दिया, अब आप इस कन्या को लेके क्या करोगे, ये तो इसकी कन्या है, आप अपनी कन्या कैसे कह रहे हैं। महाराज ने उसके सिर पे पीछी मारी, बोल बेटी तुझे मैंने पूर्व जन्म में पढ़ाया था कि नहीं। अब एकदम उसको जाति स्मरण हो गया, महाराज की पीछी लगते ही उसको जाति स्मरण हो गया, और उस कन्या ने एकदम याद किया कि वाह इनने तो हमें बहुत कुछ पढ़ाया था और हम भूल गए थे, तो आज हमें जाते स्मरण हुआ है और उसी संस्कार के बल से मेरे अणुव्रत धारण करने के भाव हुए। ये जब जन्म जन्म में संस्कार चलते ना, कल कोई हमसे पूछने लगे कि आपने सब सुना दिया उसने कि क्या क्या मुझे पढ़ाया था, तो ये पूर्व भव के मैं यहाँ जाति स्मरण की बात आई ना, तो एक कथा याद आ गई कि इस प्रकार से गुरुदेव ने अगर कहा ये मेरी कन्या मतलब हमें इसको कन्या के रूप में जन्म और इसको पढ़ाया लिखाया और गुरु आ जाए, तो पहले तो उन संस्कारों का प्रभाव रहा कि अपनी सहेली के साथ में उसे अणुव्रत धारण करने की भावना हो गई, नहीं तो होती नहीं है। दूसरी बात, गुरु के पूछने पर और पीछे रखने पर उसे सारा स्मरण हो गया। तो जो व्यक्ति अपनी बेटी के व्रत में आया था, उसे तुड़वाने के लिए आया था, उसने भी देख लिया कि वाह, गुरुदेव ने इस प्रकार से हमें आज सम्यक बोध करा दिया। तो जो जैन गुरुओं से नफरत करता था, द्वेष करता था, वो भी कट्टर जैनी बन गया। बोलो जैन धर्म की, तो महानुभाव इसलिए इनको सबको एक-एक पंक्ति को, कोई धौला से, कोई जय धौला से, कोई लब्धिसार से, कोई तत्वार्थ राजवार्ती से इकट्ठी कर करके ज्ञानमती माता जी ने इस प्रवचन निर्देशिका में 68 ग्रंथों का सार भर दिया। और इसे बड़े बड़े विद्वानों ने जब पढ़ा तो उन्होंने दांतों तले उंगली दबा ली कि माता जी आपने ऐसी चमत्कारी पुस्तक लिख दी कि केवल विद्वान बनने के लिए ही नहीं, ये आत्मा के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कुंजी है। देख लो इस पुस्तक को, इसका नाम है प्रवचन निर्देश का, ले जाना और पढ़ना और परीक्षा देना। जैसे पूरे देश के अंदर आज लोग बैठे हुए पढ़ रहे हैं पारस चैनल के माध्यम से और ऋषभदेव जूम चैनल के माध्यम। हमारा तो लक्ष्य एक है कि हम जब जानेंगे कि सारी गतियों में सम्यक दर्शन होता है तो अपनी मनुष्य गति के प्रति खूब मूल्यांकन होगा, हम उसकी वैल्यू कर सकेंगे कि हम तो मनुष्य हैं तो हम सम्यक दर्शन क्यों नहीं धारण कर सकते। तो वो कन्या भी सम्यक दृष्टि बन गई जिसने जैनेतर संप्रदाय में जन्म लिया था और जिसके पिता उन नियमों को वापिस करने के लिए गए थे, वे सब कट्टर जैनी बन गए, माने सम्यक दृष्टि बन गए। तो ऐसे ही प्रश्नों को उठा करके कहा कि आप जब जब भी गुरु मिले तो उनकी देशना को प्राप्त करना। अब आप आए हो तीर्थ दर्शन के लिए, लेकिन ज्ञानमती माते के पास आए तो आज साधुवाद युवा क्लब के लोग दिल्ली से आए, उनको पूज्य माते का खूब आशीर्वाद मिला और उनकी देशना मिली। आप लोग अलग अलग स्थानों से आए हो, कोई राजस्थान से आए हैं, कोई मध्य प्रदेश से आए हैं, आए तो हो तीर्थ यात्रा करने, लेकिन ये जीवंत तीर्थ हैं, ये चैतन्य तीर्थ हैं। भगवान ने आपसे कुछ नहीं कहा कि आप पहली बार क्यों आए हो या इतने दिनों में क्यों आए हो, लेकिन ज्ञानमती माता जी हम लोग जरूर कहते हैं कि आप तीर्थ यात्रा करने आए हो तो अपनी आत्मा को तीर्थ बनाना। तो इस पुस्तक के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि इस कथन से देशना लब्धि घटित हो जाती है, पुनः उसी समय करण लब्धि रूप परिणाम जो कि कर्मों के उपशम आदि रूप अंतरंग हेतु है उसके होने पर सम्यक तो प्रकट हो जाता है। यदि किसी मनुष्य तिर्यंच को जिन बिंब का दर्शन करते ही प्रणाम गद हुए या मुनि दर्शन करके उनका उपदेश सुनकर जाति स्मरण कारण से धर्म में अनुराग उत्पन्न होकर श्रद्धा उत्पन्न हो गई तो उतने अल्पकाल में इन पांचों लब्धियों का होना कैसे संभव है। शिष्य लोग प्रश्न करते हैं, आचार्य उनका उत्तर देते हैं कि भाई कोई चाहे कुत्ते ने नमोकार मंत्र सुना, चाहे शेर ने उद्बोधन सुना, वो महावीर बन गया, तो क्या उतनी सी देर में उसके पांचों लब्धियां हो गई। तो उत्तर देते हैं, इन लब्धियों का अंतर मुहूर्त मात्र काल में हो जाना असंभव नहीं है। हम इधर सुन रहे हैं आत्मा उधर पवित्र हो रही है, कर्म उधर नष्ट हो रहे हैं। देखो हमने साबुन लगाई कपड़े में और मैल कटना शुरू हो गया कि नहीं, हमें तो जब बिल्कुल साफ हो जाता है तब दिखता है, लेकिन साबुन लगाते ही मैल कटना तो शुरू हो ही जाता है। ऐसे ही उपदेश सुनना मतलब साबुन लगाना और तुरंत कर्मों का कटना शुरू हो जाना और सम्यक दृष्टि बन जाना मतलब एक साफ स्वच्छ कपड़े का तैयार हो जाना। तो कहा कि अंतर मुहूर्त के अंदर माने 48 मिनट के अंदर अंदर अगर पांचों लब्धियां मिल जाए तो कोई असंभव वाली बात नहीं। पांच लब्धियों के नाम सुन के जाना, चयोपशम बोलो, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य और करण लब्धि, ये पांच लब्धियां हैं। और इनको कहने में देर लगी। और जब आत्मा में पवित्रता आती है, गुरु के उपदेश को सुनते हैं, अंदर में ये सब लब्धियां आके मिल करके सम्यक दर्शन को प्रकट कर देती हैं। तो आचार्य कह रहे हैं कि अंतर मुहूर्त में ये सब अपनी काल लब्धियां अपना कार्य पूरा कर दें असंभव नहीं है। यदि सबके पृथक पृथक काल में अंतर्मुहूर्त होए तो भी सबका मिलकर भी अंतर्मुहूर्त मात्र काल हो सकता है, इसमें कोई बाधा नहीं है, क्योंकि अंतर्मुहूर्त के भी असंख्यात भेद होते हैं। हमने तो इतना सा किया, ये भी अंतर्मुहूर्त है, और 48 मिनट वो भी अंतर्मुहूर्त है, और इसके बीच का काल भी अंतर्मुहूर्त है। तो इसमें कोई बाधा नहीं, किसी को बड़े अंतर्मुहूर्त में हो जाए सम्यक दर्शन, किसी को छोटे से अंतर्मुहूर्त में हो जाए। इसलिए सम्यक्त के पूर्वोक्त कारणों से जो अनादि मिथ्या दृष्टि के प्रथमोपशम सम्यक्त होना माना है, सो उसमें पांचों लब्धियों को अंतर्गर्भित मानना चाहिए। ये सारी बातों को समझ करके हमें तो केवल कारण उपलब्ध करा देना है, चाहे संतों के उपदेश का कारण। आज ये बच्ची यहाँ पर सुन रही है, पता नहीं कब जब ये थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, आप कहोगे हमने आपको ज्ञानमती माता के दर्शन कराए थे, है ना, तो इसे याद आ जाएगा कि हम बच्चे थे, हम दर्शन करने गए। कोई ना कोई कारण इसका उपस्थित हो जाएगा जब ये याद करेगी और इसका सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा। तो ऐसे बचपन से बच्चों को भी संस्कार डाल करके और भगवान के दर्शन संतों के सत्संग से हमेशा संस्कारित करना ही चाहिए। ये आज के स्वाध्याय का आपको सार समझना है। इसके अतिरिक्त अब मैं अगले विषय